अध्याय 9, बॉक्सर आंदोलन, द बॉक्सर मूवमेंट। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के चीन एवं जापानी अध्ययन विभाग के प्राध्यापक पूनम माथुर के द्वारा लिखा गया है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध चीन में काफी उथल-पुथल का काल रहा। अब साम्राज्यवादी शक्तियां चीन के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी। इस अवधि में जहां एक ओर से चीन को पश्चिम के पद चिन्हों पर चलाकर आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया, वहीं चीन में पश्चिम के बढ़ते प्रभाव का घोर विरोध हुआ। यही विरोध सन 1900 ईस्वी में ई हथुआन अर्थात मुक्केबाज या बॉक्सर आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। साम्राज्यवादी शक्तियां, ईसाई धर्म प्रचारक और धर्मांतर करने वाले चीनी इस आंदोलन का मुख्य शिकार बने, क्योंकि आंदोलनकारी इन्हें साम्राज्यवाद का पोषक समझते थे। किंतु साम्राज्यवादी शक्तियों ने महारानी तशशी को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और आंदोलन को विफल कर दिया। इस विफलता के फलस्वरूप बॉक्सर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें चीन की संप्रभुता को और भी धक्का लगा। बॉक्सर आंदोलन का जन्म एवं पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान ने पश्चिमी देशों की तरह चीन में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। बाहरी शक्तियों का यह सामूहिक दबाव उस समय बढ़ा जब प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे थे और जनसाधारण की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। अंदरूनी राजनीति तथा साम्राज्यवादी आक्रमण के कारण शासक छिंग वंश की शक्ति बहुत छिन्न हो गई थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण चीन अत्यंत विचित्र स्थिति में पहुंच गया था। नवीन एवं प्राचीन सभ्यताओं के तत्व एक साथ विद्यमान थे। कई पक्षों में परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई थी। यांगत्ज नदी में भाप की नावें चलने लगीं। चीन के पूर्वी तट पर नए उद्योग लगने लगे। विज्ञान विषयक पुस्तकें बड़ी संख्या में छपने लगीं और बेतार के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं देश के विभिन्न कोनों में पहुंचने लगीं। पश्चिमी देशों के खानों, संचार और भारी उद्योगों में पूंजी निवेश करना आरंभ कर दिया। चीन में भी स्थानीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिससे सुदीर्घ काल से विद्यमान सामंतवादी सामाजिक आर्थिक ढांचा अर्ध सामंती होने लगा। यद्यपि पारंपरिक क्रमानुगत समाज बना रहा, फिर भी उत्पादन की नई शक्तियां उभर आईं। बुजुर्गवा और सर्वहारा वर्ग छोटे होते हुए भी सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गए। परंतु यह सारा परिवर्तन संधि बंदरगाह क्षेत्रों तक और उनमें भी उन क्षेत्रों में जहाँ पश्चिमी देशों को विशेष सुविधाएं दी गई थी सीमित रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े से बड़े विदेशी व्यापारियों का प्रवेश भी बहुत धीमा रहा, तथा वह चीनी मध्यस्थ एवं दलालों के माध्यम से ही हुआ। संपन्न परिवारों के चीनी नवयुवकों के लिए पुरानी परीक्षा प्रणाली ही आगे बढ़ने का एकमात्र साधन बनी रही। उन्हें ऊंचे ऊंचे सरकारी पद मिल जाते थे, समाज में आदर प्राप्त होता था और पर्याप्त मात्रा में आय भी हो जाती थी। परंतु स्त्री शिक्षा का प्रचलन बहुत कम था। स्त्रियों पर नाना प्रकार के बंधन थे और उनका विवाह माता-पिता की इच्छा से ही होता था। कृषि के लिए पुराने तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। विदेशियों को या तो कोई अजूबा या फिर जंगली माना जाता था। विदेशों में स्थित चीनी राजदूतों को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वापस आने पर उनका बहुत अपमान किया गया। पारंपरिक सामाजिक संगठन का यह प्रभुत्व बॉक्सर आंदोलन के स्वरूप में परिलक्षित होता है। कुछ अन्य क्रमिक परिवर्तनों से चीन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परंपरा और परिवर्तन के मिश्रण एवं अनेक समस्याओं का बोध होता है। 19वीं शताब्दी के अंत के वर्षों में चीन में जनसंख्या दर में वृद्धि हो गई, जिसका शहरी तथा ग्रामीण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। बेरोजगार शिक्षितों की संख्या बढ़ गई तथा सरकारी नौकरियों के लिए स्पर्धा बहुत तीक्ष्ण हो गई। छिंग शासन ने समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे अधिकृत डिग्रियों को प्रदान करने में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बहुत अधिक बढ़ गया। फलस्वरूप सबको समान तथा सामाजिक गतिशीलता का अवसर देने के लिए बनाई गई परीक्षा पद्धति अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। तंबाकू और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने से किसानों को अधिक लाभ तो प्राप्त हुए, परंतु वे बाजार की तेज मंदी के शिकार होने लगे। जो विश्व व्यापार के लिए रेशम और चाय की खेती करते थे, वे विश्व बाजार में मूल्यों की ह्रास वृद्धि से दुष्प्रभावित होने लगे। चीन में विदेशी पूंजी और औद्योगिकीकरण के कारण हस्तशिल्प उद्योग की भारी क्षति हुई। हस्तशिल्प उद्योग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थे। अतिरिक्त कर भार से भी कृषक पीड़ित हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विदेशियों के हाथों पराजय एवं उन्हें क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के कारण छिंग शासन के कोष पर बहुत भार पड़ा। शासन ने करों की मात्रा बढ़ाकर अपने कोषों को फिर से भरने का प्रयत्न किया। जब सरलता से करों की वसूली न हो सकी, तो अधिकारियों ने जनता को आतंकित किया, जिससे समस्त कृषक समाज शासन से कट गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आई अनेक प्राकृतिक विपदाओं ने किसानों की पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया। 1886 ईस्वी और 1887 ईस्वी के मध्य चियांगसू के 8 और अनाहुएई के लगभग 40 जिलों में बाढ़ और सूखे का तांडव हुआ। पीली नदी के किनारे के क्षेत्र सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुए। सन 1897 से 98 ईस्वी में विशेष रूप से शांतुंग और चिरली राज्यों में हजारों लोग बाढ़ और सूखे के कारण निर्धनता और भुखमरी की चपेट में आ गए। छिंग शासन के पास तटबंधों और नहरों के जीर्णोद्धार के लिए साधन नहीं थे, और न ही स्थानीय रूप से जुटाए गए साधन इस कार्य के लिए पर्याप्त थे। स्थानीय अधिकारियों की अकुशलता एवं भ्रष्टाचार के कारण कई स्थलों पर स्थिति असह्य हो गई। चीन में सदा से यह माना जाता है कि प्राकृतिक विपदाएं किसी दैवी कारण से आती हैं। ये देवताओं के प्रकोप को लक्षित करती है और राष्ट्र में विद्यमान पाप का दंड देती है। बॉक्सर प्रचारकों ने इस बात को बार बार दोहराया। उन्होंने कहा कि यह सूखे विदेशियों और उनके द्वारा प्रचारित धर्म के कारण पड़ते थे। इस सामाजिक व्याकुलता को अंतर्राष्ट्रीय कारणों ने हवा दी। साम्राज्यवादी शक्तियों के आक्रमणों से देश में व्यापक रूप से असंतोष भड़कने लगा था। अफीम युद्ध में चीन की पराजय के बाद विदेशी शक्तियां चीन पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। विदेशियों के हाथों बार बार हार का परिणाम यह हुआ कि विदेशियों को बहुत अधिक सुविधाएं मिलने लगी और उनके लिए अनेक शहरों के द्वार स्वयं खुलते गए। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने कारखानों पर आधुनिकीकरण की मोहर लगाकर उन्हें सार्थक सिद्ध कर दिया। यह सच है कि पश्चिमी देशों ने ही चीन में रेल, टेलीग्राम और आधुनिक उद्योग आदि सुविधाएं प्रदान की, परंतु चीनियों को इनका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। उन्होंने चीन के शासकों को विदेशियों को अनेक विशेषाधिकार देने पर विवश कर दिया और विदेशी मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट, विदेश से आयातों पर समान दर से सीमा शुल्क आदि जैसी अनेक सुविधाएं अपने लिए प्राप्त की। इन सब बातों से चीन की संप्रभुता को गहरा धक्का लगा। 1894 से 95 ईस्वी में जापान के हाथों चीन की हार और शिमोनोसेकी की संधि के कारण चीन की विकल स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इस संधि से जापानी पूंजीपतियों को चीन के व्यापारिक बंदरगाहों में फैक्ट्रियां खोलने की छूट मिल गई और उन्हें अपनी पूंजी का निवेश करने का अवसर मिल गया। इस काल में जापानी पूंजीवाद उस अवस्था में पहुंच गया था जिसे लेलिन ने पूंजीवाद की एकाधिकार अवस्था कहा है। साम्राज्यवादियों ने इससे पूर्व की संधियों में चीन को सर्वप्रिय राष्ट्र संबंधी अनुच्छेद रखने पर विवश किया। इस अनुच्छेद का अभिप्राय यह था कि यदि किसी देश को चीन में कोई विशेषाधिकार मिला तो वह अन्य देशों को भी मिलेगा। इस अनुच्छेद के कारण चीन का बहुत अधिक शोषण हुआ। पृष्ठ संख्या 137। चीनी जापानी युद्ध से पहले चीन को विदेशों से बहुत कम ऋण लेना पड़ा, किंतु शिमोनोसेकी की संधि के अधीन हर्जाने की भरपाई करने के लिए चीन को रूसी, फ्रांसीसी और एंग्लो जर्मन इन दो एकाधिकार संपन्न पूंजी स्वामी वर्गों से बहुत अधिक ऋण लेना पड़ा। यह ऋण उसे सीमा शुल्क और चुंगी की आय प्रतिभूति के रूप में विदेशियों के हाथ रख कर मिला। परिणामतः चीन की आय के अधिकतर साधन विदेशियों के नियंत्रण में चले गए। चीन में विदेशी बैंक के खुल जाने से साम्राज्यवादियों का आर्थिक नियंत्रण और भी अधिक दृढ़ हो गया। विदेशी बैंकों ने छिंग सरकार को ऋण दिए। उसके अर्थतंत्र पर नियंत्रण कर लिया, रेलवे में निवेश, पूंजी बाजार में हेर फेर किए और विदेशी मुद्रा व्यापार को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया। भीतरी भागों तक साम्राज्यवादी गतिविधियों के विस्तार से चीनियों को अपना अस्तित्व ही समाप्त होता नजर आने लगा। परिणामतः जहां एक और सुधारवादी लोग संगठनात्मक सुधार के माध्यम से राष्ट्र के उद्धार की बात कहने लगे, वहीं साधारण जनता सशस्त्र विद्रोह द्वारा विदेशियों को उखाड़ फेंकने को तैयार हो गई। जापान को ताइवान दे दिए जाने से राष्ट्रीय स्वाभिमान को गहरा आघात पहुंचा और लोगों के मन में सरकार के प्रति असंतोष और विदेशियों के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। धर्म प्रचारकों के प्रचार के माध्यम से साधारण नागरिकों को विदेशियों के बढ़ते प्रभाव का ज्ञान हुआ। विषम संधियों के कारण चीन के भीतरी भागों तक में प्रचारकों को ईसाइयत के प्रचार की छूट मिल गई थी। ये लोग न केवल धर्म का प्रचार करते थे बल्कि धन का लोभ दिखाकर धर्मांतर भी करवाते थे। अधिकांश चीनी यही मानते थे कि ये धर्म प्रचारक ईसाइयत का प्रचार करके चीनियों के मन में विष घोल रहे हैं। रोमन कैथोलिक पादरी भी विशेषाधिकार संपन्न उच्च अधिकारियों की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। विदेशी सरकारें प्रत्येक कार्य में उनका समर्थन करती थी। धर्मांतर करने वाले चीनियों को भी विदेशी सरकारें पूरी सुरक्षा प्रदान करती थी। वे चाहे जो भी करें, वे चीनी सरकार के कानून और प्रभाव के क्षेत्र से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईसाइयत ही विदेशियों के प्रति विरोध का एक मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। पश्चिम के ईसाई चीन में रहकर अपने सांस्कृतिक और जातीय उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते थे। इसे चीनी जनता सहन न कर सकी। चीन के सांस्कृतिक अस्तित्व को मिटा देने के पश्चिमी ईसाइयों के प्रयासों का घोर विरोध हुआ। पीए वार्ग ने तो यहाँ तक कहा है कि चीन के संभ्रांतों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों तक के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया। आखिरकार ईसाई धर्म प्रचारक कन्फ्यूशियस और चीन के गौरव ग्रंथों का तिरस्कार करके उनके स्थान पर बाइबिल की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। चीन के सामान्य नागरिक भी ईसाई संस्कृति और उसके प्रचारकों को आक्रमण, धर्मांधता और असहिष्णुता के प्रतीक मानते थे। उन्हें स्पष्ट दिखता था कि ईसाई धर्म प्रचारक जमीन और संपत्ति पर कब्जा करते हैं और सरकार को कर भी नहीं देते। वे एक स्वतंत्र देश के रूप में चीन के अधिकारों का हनन करते हैं और छिंग सरकार को उन अधिकारियों को दंडित करने पर बाध्य करते हैं जो किसी कारणवश उन्हें अच्छे नहीं लगते। वे साधारण जनता तक से धन लूटते हैं। सन 1896-97 ईस्वी में मध्य चीन के हुपेई, हुनान, सिचुआन, चियांगशी, चियांगशु और शानतुंग इन 6 जिलों में धर्म प्रचारक विरोधी दंगे हुए। हर बार विदेशी शक्तियों ने क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी राशियां मांगी। यह विषय विवादास्पद है कि जर्मनी के धर्म प्रचारकों की हत्या किसी धर्म प्रचारक विरोधी गुट ने की थी या नहीं, परंतु धर्म प्रचारकों से घृणा इस कारण की जाती थी कि लोग यह मानते थे कि साम्राज्यवादियों के प्रभावों को स्थानीय प्रशासन के स्तर तक लाने का उत्तरदायी धर्म प्रचारक ही थे। विदेशी साम्राज्यवादियों तथा धर्म प्रचारकों की गतिविधियों, युद्ध क्षतिपूर्ति एवं विदेशी ऋण तथा प्राकृतिक विपदाओं के बोझ तले दबी छिंग सरकार द्वारा करों में वृद्धि जैसे कारणों से चीन में तथा विशेषतः शांतुंग और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में असंतोष की लहर दौड़ गई। शांतुंग क्षेत्र पर विदेशी साम्राज्यवादी गतिविधियों का बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा। चीन जापान युद्ध में जापानी सेना ने शांतुंग पर आक्रमण करके उस पर 3 वर्ष तक कब्जा किए रखा। शांतुंग के चियाओचोउ और वेईहाएवेई क्षेत्र पर जर्मनी एवं ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। जर्मनी ने पूरे जिले को ही अपना अधिकार क्षेत्र घोषित कर दिया। साम्राज्यवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए तटीय नौकायन एवं रेलवे के कारण आजीविका की संरचना बदल गई। बड़ी नहर का उपयोग रुक जाने से अनेक व्यापारी, भारवाहक, नाविक और छोटे मोटे काम धंधे करने वाले अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो गए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने वहाँ गिरजाघरों का जाल सा बिछा दिया। उस समय क्षेत्र में लगभग 80,000 धर्म प्रचारक और चीनी ईसाई थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध केवल एक अविकसित धर्म का प्रचार करने के कारण नहीं किया जाता था, अपितु इसलिए अधिक किया जाता था कि वे साम्राज्यवादियों का समर्थन करते थे। यही कारण है कि शांतुंग जिले में धर्म प्रचारक विरोधी आंदोलन बार बार होते थे, किंतु इन घटनाओं के कारण शोषण और भी बढ़ता था, क्योंकि धर्म प्रचारक दंगों के हर्जाने और दोषियों को दंडित करने की मांग करते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह जिला अनेक प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार भी बना।